क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सूक्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा, उसके तन में बैठे शिव को हमने है साकार देखा। बोली सुरतिया नैन नुरानी, मस्तक में एक चमक रूहानी, उनकी अनोखी चमक से हमने देखा है संसार अनोखा। उनके तन में बैठे शिव को हमने है साकार देखा, शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। निंदा की जिसने उसकी, उसको अपनाया, गिरते हुए को जिसने उठाया, कर्म की अनोखे जिसने वो गुणों का श्रृंगार देखा, शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उसके तन में बैठे शिव को हमने है साकार देखा, उसके तन में बैठे शिव से शिव को हमने अलौकिक प्यार देखा, शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। तो यज्ञ इतिहास में दो बड़ी सेवाएं हमने देखी। पहली मिलियन मिनट्स ऑफ पीस 1986, दूसरी हमने देखी ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड 1988। और कल हमने कहा था इसी 1988 में और एक घटना घटी, और वो क्या थी? गुलजार दादी, अचानक डिटेक्ट हुआ कैंसर, और इस कैंसर का इलाज हुआ मुंबई में, ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब चला, और बहुत जल्दी दादी इसे बाहर भी आ गए। तो ये जो बीच का समय था उसमें कोई मुरली नहीं चली, लगभग 453 डेज। लास्ट जो अव्यक्तवाणी चली वो थी 11th 8th 88 की। इसका अर्थ, ये जो कैंसर डिटेक्ट हुआ ये इसके बाद हुआ। और उसके बाद में नेक्स्ट जो अव्यक्तवाणी चली दादी की वो थी 7/11/89। ये जो पीरियड था बीच का, इसमें कोई अव्यक्तवाणी नहीं चली, क्योंकि बहुत देखा जाए तो लंबा चला कैंसर, फिर उसका ऑपरेशन, फिर कीमो, फिर रेडियो, परंतु ये सब से दादी बहुत अच्छी तरह से बाहर भी आ गए। परंतु बीच का ये जो समय था इसमें कोई अव्यक्तवाणी, कोई बाबा मिलन नहीं हुआ। 453 डेज लगभग। एक प्रश्न सभी के मन में रहता है, और इसके पहले भी इसकी चर्चा की थी, प्रश्न पूछा था, उत्तर दिया नहीं था। दो प्रश्न। पहला प्रश्न था कि जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, या फिर जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, देव पुरुष होते हैं, त्यागी पुरुष होते हैं, धर्मात्माएं होते हैं, वो बीमार क्यों पड़ते हैं? यह पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था, जो कम आयु में शरीर क्यों छोड़ देते योगी पुरुष, इसका क्या कारण? तो ये जो पहला प्रश्न पूछा था कई समय पहले, आज उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे कि जो आध्यात्मिक पुरुष है, व्यक्ति है, वो बीमार क्यों पड़ते हैं? कारण बहुत सारे हैं, ऐसे 18 कारण हम लेंगे। बीमारियों के कारण नहीं है, बीमारियों के कारण बहुत सारे, अगर एक साधारण व्यक्ति को लिया जाए तो वो क्यों बीमार पड़ता है? ये कारण किनके हैं? जो स्पिरिचुअल सोल्स है, क्योंकि लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम लोग सिखाते हो राजयोग, और राजयोग से क्या बोलता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, फिर तुम लोग बीमार क्यों पड़ते हो? तुमको तो नहीं पढ़ना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जब थे, उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें अवतार समझते थे और अवतार मानते थे, और वो ऐसे लोगों की बहुत हंसी उड़ाते थे। एक बार झाड़ पर चढ़ गए थे और झाड़ से गिर गए, फिर फ्रैक्चर हो गया। फिर जो लोग उनको अवतार समझते थे उनके पास गए, देखो तुम्हारे अवतार का हाथ फ्रैक्चर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया था। उसी तरह रमन महर्षि कैंसर डिटेक्ट हुआ, मम्मा कैंसर, नॉट जस्ट कैंसर परंतु उससे बाहर आए ही नहीं। विश्वकिशोर भाऊ, ऑपरेशन हुआ, 5वें दिन शरीर से बाहर। दीदी कैंसर, ऑपरेशन। जगदीश भाई, सभी को ले लो जिन्होंने दिन रात सेवाएं की, बीमारियां तो थी। तो संसार की महानतम आत्माओं का भी अध्ययन अगर किया जाए, उनको भी बीमारी आई। बुद्ध 80 साल की उम्र में, 40 साल तो परिभ्रमण किया भारत का संदेश देते देते, और जब एक जगह पहुंचे, वो एक व्यक्ति भोजन लेके आया, पर उसे भी नहीं तो पता था, बेचारा विषाक्त था वो भोजन, मशरूम, और उनको भी पता था, फिर भी उन्होंने खाया, और उस भोजन का प्रभाव उन पर हुआ, शरीर छूट गया, डेथ। तो क्या कारण है कि महान आत्माएं या फिर एक्सट्रीमली हायर स्पिरिचुअल सोल्स, उनके शरीर में भी बीमारियां होती है? तो कारण बहुत सारे, कुछ कारण हम लेंगे, कुछ स्पिरिचुअल कारण, कुछ प्रकृति के कारण, कुछ और कुछ और। तो सबसे पहला कारण, ऐसी आत्माएं जो होती है उनका दूसरी आत्माओं के साथ बहुत कम हिसाब है। हमारे हिसाब किताब किस तरह से चुकतू होते हैं दूसरी आत्माओं के साथ, संबंधों में कड़वाहट, संबंधों में तनाव, संबंधों में दुख, किसी की शादी होती है, लड़ाई झगड़ा, कुछ और ही सच्चाई बाद में पता चलती है, अलग हो जाते हैं, ये क्यों हुआ? कोई हिसाब था उस आत्मा के साथ, इसलिए पास आना पड़ा, समीप आना पड़ा, हिसाब चुक तो हुआ, वो उसके मार्ग में, हम अपने मार्ग में, बट वो नेसेसरी था, उसके सिवा शायद वो हिसाब चुक तो ही नहीं होता। तो हमारे हिसाब किताब कैसे चुक तो होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं आती है, एक होता है इंडिविजुअल हिसाब किताब, एक होता है मास कलेक्टिव कार्मिक अकाउंट्स, चुकते होते एक साथ। तो जो महान आत्माएं होती है, जैसे दादी को ही ले लो, कहते हैं 7 जन्म की पवित्रता है या उससे भी ज्यादा। भगवान ऐसे ही किसी को अपना रथ नहीं बनाता, भगवान का किसी को रथ बनना है तो उसमें कितनी डिविनिटी होगी, कितनी प्यूरिटी होगी। 8 साल की उम्र में पहला साक्षात्कार, 9 साल की उम्र में दादी तैयार थी, शिव की सजनी तैयार है शिव कर बलिहार जाने के लिए। 9 साल की उम्र में क्या समझता है लोगों को, बच्चों को, इस उम्र में सारे स्वर्ग के सितारे साक्षात्कार होने चालू हुए। ऐसे थोड़ी चुना भगवान ने, जो रूहानियत जो डिविनिटी दादी में है, ऐसी संसार की कोई आत्मा हो ही नहीं सकती, अभी तक तो देखी नहीं गई है, कि जो भगवान का चैनल बन सके, मीडियम बन सके। बाकी दादियां भी थी, पर बाकी दादियों का पार्ट और था, प्रेम का पार्ट था, ज्ञान का पार्ट था, पर गुलजार दादी का पार्ट था साइलेंस का, मौन का, स्वभाव ही मौन का था। और भगवान ऐसे ही तन में आता है। संसार में दूसरे चैनल्स भी है, कई सारे लोग हैं, जो कल भी सुनाया था, जिनके शरीर में आत्माएं प्रवेश करती है, पर आत्माएं प्रवेश करती है परमात्मा नहीं। आत्माएं तो प्रवेश करेगी, अतृप्त आत्माएं भटक रही है, इस परिवार से ही कितनी आत्माएं चली गई है, वो भी यहां वहां होगी। एक आत्मा ने शरीर छोड़ा था, एक ब्राह्मण आत्मा ने, बाबा का भोग संदेश आया था, कि भोग संदेश में हमने सुना था कि बाबा ने कहा कि उस आत्मा को बाबा ने अपने एक सिंहासन पर बिठाया और वो आत्मा बहुत खुश हुई। फिर बाबा ने राज खोला कि उस आत्मा को हमेशा इच्छा थी कि मान मिले सम्मान मिले, पर मिला ही नहीं, तो बाबा ने उसकी यह इच्छा पूरी की उसको सिंहासन पर बिठाकर। तो अतृप्त आत्माएं, तो उनको क्या चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, ज्ञान योग धारणा सब कुछ है, पर मान नहीं मिल रहा है। तो ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो फिर क्या करती है, किसी और के आत्मा शरीर में, जो मीडियम्स है जो चैनल्स है उनमें प्रवेश करती है। और ऐसी आत्माएं सब कुछ कर सकती है, कोई भी भाषा बोल सकती है, एनी लैंग्वेज, कैसे भी हाव भाव प्रकट कर सकती है। और भगवान को तो इन्होंने देखा ही है और भगवान से इन्होंने मिलन मनाया है, तो वो सब कुछ जानती है, सारी मुरलियों का ज्ञान है, इधर उधर जोड़ने में ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करे, परंतु भूख है एक, प्यास है किसकी, सम्मान की, रिकॉग्निशन की। अभी इस जन्म में तो मिला नहीं, तो इस इच्छा का क्या करें, किसी और शरीर में प्रवेश करके आत्मा तृप्त होती है। तो ये तो हम कह रहे थे बात हिसाब किताब की। तो जो महान आत्माएं हैं उनके हिसाब किताब दूसरी आत्माओं के साथ कम रहते हैं, जो महान आत्माएं उनके हिसाब किताब प्राकृतिक आपदाओं के वजह से उनको दुख नहीं होगा, तो उनके हिसाब किताब कहां से चुकते होंगे, अपने ही शरीर की बीमारी से। ये पहला कारण है, फर्स्ट रीजन कार्मिक अकाउंट, उनकी अपने ही शरीर से ये हिसाब किताब चुकते होंगे, किसी और के वजह से उनको दुख नहीं मिलेगा, कोई इंचार्ज उनको सता रहा है, कोई साथी उनको दुख दे रहा है, कोई जूनियर उनको दुख दे रहा है, कोई बाहर की आत्माएं दुख दे रही है, कोई उन पर कमेंट्स कर रहा है, ये सब चीजें कम होगी उनके साथ। कोई संबंध में तनाव और झगड़ा चल रहा है, ये नहीं होगा। उनके साथ क्या होगा? अब उनके भी तो कुछ ना कुछ हिसाब है, क्योंकि ऐसी कोई आत्मा नहीं है कि जिसने विकर्म जिसकी वजह से नहीं हुए, क्योंकि बाबा ने तो ये कहा है कि जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा वो भी एक विकर्म। जब जब तुमने शरीर देखा वो एक पाप किया, ये परिभाषा है उसकी। तो उस हिसाब से तो सबसे पहला कारण उनके हिसाब किताब अपने ही शरीर से चुक्त होंगे इसलिए बीमारी होगी। एक कन्या थी अहमदाबाद में, और जो बहुत अनन्य कन्या थी और एकदम पक्की ज्ञान में, रोज सेंटर पर जाना, एकदम धारणा। और एक दिन अचानक वो ट्रेन क्रॉस करती रहती है, उसकी ट्रेन आ जाती है उधर से, और डेथ ऑन द स्पॉट। भोग संदेश जाता है, बाबा को पूछा जाता है, बाबा ये क्या, इसने कौन से पाप किए? बाबा कहते हैं बाप को बच्ची से बहुत प्यार है, इसलिए उसके अब तक के जितने थे विकर्म एक सेकंड में बाप ने भस्म कर दिए। अब जो नया जन्म होगा उसका, वो बहुत पावरफुल होगा। ये बहुत पुरानी घटना है, उस आत्मा ने जन्म ले भी लिया होगा और पता नहीं कितनी सेवा भी की होगी, या यहीं कहीं बैठी होगी। तो फर्स्ट रीजन कार्मिक अकाउंट। दूसरा कारण, जो महान आत्माओं को भी बीमारी आती है, वो लोगों को ये सिखाने के लिए कि हम भी साधारण व्यक्ति है, हम भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा भी ऑर्डिनरी जीवन है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति असाधारण बन जाता है तो लोग क्या समझने लगते, ये तो संत है, ये तो भगवान है, इसके साथ इसको कुछ नहीं, ये एक अलग ही है, इसके पास ना पहले से बहुत सारी शक्ति है, ये अवतार है। पर यह आत्मा ये सिखाती है कि हम अवतार नहीं है, हमको ये एकदम डायरेक्ट परम धाम से आई हुई आत्माएं नहीं है, हम कौन है, हम साधारण है, जैसे तुम हो वैसे हम हो, जैसे तुमको तकलीफ होती है मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो ये सखा सिखाना चाहते हैं कि हम असाधारण नहीं है, हमारा भी शरीर वैसा ही है जैसा तुम लोगों का शरीर है। ये सेकंड कारण। तीसरा कारण, ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, सभी परिस्थितियों में अचल अडोल रहना, तो वो अपने कर्मों से ये बताती है कि शरीर की बीमारी आ गई, इतना दर्द है, फिर भी सहन शक्ति का प्रदर्शन। तो थर्ड रीजन है ग्रैंड, ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप अगर नहीं हो तो कौन मानेगा तुमने ज्ञान धारण किया? खाली भाषण देना ही ज्ञान थोड़ी है, भाषण तो कला है, उसका धारणा से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अमृत वेले पर बहुत अच्छा भाषण कर सकता है और खुद रोज उठता है 8 बजे, ब्रह्मचर्य पर बहुत अच्छा भाषण दिया जा सकता है, कला है वो भाषण देना। किसी को भी ट्रेन कर दो सीख जाएगा, गधे को भी 1 महीना ट्रेनिंग दो वो भी भाषण करना चालू कर देगा, उसका धारणा से कोई संबंध नहीं है, धारणा एक अलग चीज है। भाषण हाँ, वो एक सेवा के रूप से करो तो ठीक है, ये सेवा पूरी हुई, अब मेरा अपना पुरुषार्थ, जो दूसरों को सिखाया अब मुझे खुद सीखना है, मैं क्या कर रहा हूं खुद। तो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप उनको दिखाना है, इसलिए उनको बीमारी आती है। दादी को कैंसर की बीमारी आ गई, अवस्था कैसी है दादी की? अचल अडोल। क्या चिल्ला रही है, डॉक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इमरजेंसी है। डॉक्टर्स को इमरजेंसी है, उनको कोई इमरजेंसी नहीं है, वो शांत है, स्थिर है। पेन भी होता है तो ये नहीं कहती मुझे पेन है, जब पूछो तो बताते, 4 बार पूछने के बाद 1 बार बताते पेन है क्या, यहां है क्या, दबाने से होता है क्या। हाँ, ये इतना सब पूछने, लीडिंग 4 प्रश्न पूछने के बाद सभी दादियां, एक दादी नहीं, ऑल। दादियों को पूछो दर्द है क्या, कहते हैं वो जो ब्राह्मणी उससे पूछो, दर्द तुमको है या उसको। सभी दादियां, कोई एक नहीं, सभी का हमने देखा। कल परसों की बात है, परसों ही रतनमणि दादी से मिलने गए थे, सूजन थी पैर में, हमने पूछा अभी दर्द है क्या, दर्द उसको आने दो वो बताएगी दर्द है कि नहीं है। आपको दर्द है कि नहीं, हाँ वो बताएगी। नींद आई क्या, वो बताएगी, अरे इतना अपने ही शरीर से इतना साक्षी बने। जो ज्ञान में बाबा कहते हैं साक्षी हो जाओ, वो प्रैक्टिकल रूप दिखाई दे रहा है। तो ये तीसरा कारण है। ये अपने शरीर की बीमारियों से सिखाना चाहते हैं कि ज्ञान अगर प्रैक्टिकल में लाना है तो ये विधि है, ये मेथड है ज्ञान को लाने की। चौथा, जब महारथी बीमार पड़ते तो दूसरी आत्माएं उनकी सेवा करती है, करती है, उनको सेवा लेनी नहीं है। पर जब आप महारथी आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या मिलता है? पुण्य। ये उनकी करुणा है, ये उनका रहम भाव है। जैसे एक भिखा, ये होता है सन्यासी होता है, वो भी भिक्षा क्यों मांगता है? खुद के पेट के लिए ना, ताकि जो गृहस्थी है वो उनको भिक्षा देते हैं तो गृहस्थियों में देने का संस्कार जागे, करुणा जागे। वो जो लालच है उनके अंदर पैसों का, भोजन का, धन का, वो थोड़ा कम हो, ये सूक्ष्म भाव होता है। बाकी उनको तो क्या, नहीं भी मिला तो जंगल में रह लेंगे, फल खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, उनको थोड़ी ना कुछ चाहिए। पुराने सन्यासी, अब वाले नहीं, धामा खाने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। तो एक कारण क्या है बीमारियों का, कि दूसरी आत्माओं में करुणा जगाना, दूसरी आत्माओं के मैं को तोड़ना। क्योंकि सेवा करना अर्थात अपने मैं को तोड़ना पड़ता है, कम करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसके सिवा सेवा थोड़ी कर सकते हो। झाड़ू लगाओ, अहंकार वाले अहंकारी व्यक्ति कहेगा कि मैं झाड़ू लगाता हूं? नहीं। एक राजा अपना सारा राज्य छोड़कर एक आश्रम में आ जाता है, वैराग इतना आ जाता है उसको, सब संसार व्यर्थ है, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान को ही पाना है बस। और वो गुरु को कहता है मुझे संन्यास लेना है। गुरु कहता है रुको थोड़ा, कुछ दिन यहीं रुको, फिर बताऊंगा। और उसको क्या दे देता है? काम दे देता है। कौन सा काम? झाड़ू लगाने का, आश्रम की सफाई सुबह सुबह राजा को। और एक दिन राजा जब सफाई कर रहा होता है, एक दूसरा आश्रम का भाई शिष्य गुरु भाई आता है, जोर से उसको धक्का लेकर आगे जाता है। राजा को इतना क्रोध आता है, तुमको दिखता नहीं है क्या, इधर मैं झाड़ू लगा रहा हूं, आंखें नहीं है कि तुमको? वो तो चला भी गया जब तक। 15 दिन के बाद राजा झाड़ू लगा रहा है सुबह सुबह, एक दूसरा व्यक्ति और जोर से धक्का लगाकर उसको जाता है। पहली बार तो उसने बहुत चिल्लाया था, गुस्सा किया था, इस बार एकदम बोल नहीं जाता है। तो उसको थोड़ी शायद 15 दिनों में अपनी कुछ चेकिंग की होगी कि मैं ये आया किस लिए, और क्रोध से तो नुकसान हो गया। तो 15 दिन के बाद वो उसको गुस्से से देखता है, बस कहता कुछ नहीं है, पर आंखें सब कुछ कह देती है। फिर 15 दिन के बाद झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति जोर से आता है, गुरु भाई कोई, और धक्का लगा के आगे निकल जाता है। तब वो एकदम से देखता है उसको, पर आंखें नीचे कर लेता है। पहली बार तो क्रोध आता है, फिर दूसरी बार आंखें नीचे। 15 दिन के बाद फिर और एक व्यक्ति आता है, दूसरा, उसको धक्का लगाता है, तब राजा उसको देखता तक नहीं, अपना झाड़ू चालू रखता है। और एक बार व्यक्ति धक्का लगाता है 15 दिन के बाद, राजा कहता है बहुत तुम्हारा शुक्रिया। गुरु कहता है नाउ यू आर रेडी, अभी तुम तैयार हो। तो सेवा से क्या होता है? मैं नष्ट होता है, ये सेवा का उद्देश्य है। परंतु ये ना हो कि सेवा से कुछ और हो रहा है, तो फिर वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। तो ये सब क्या सिखाते हैं? महारथियों की बीमारी दूसरी आत्माओं को सेवा करना सिखाती है। नेक्स्ट, दूसरी बाहर आत्माओं को जब बीमार होते हैं तो क्या हो जाती है? असंख्य आत्माएं ज्ञान में आ जाती है, सेवा हो जाती है। जैसे जो हम कल लेंगे, दादी गुलजार बीमार पड़े, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चले, दादी ठीक होगी, दादी वापस आ गई। निर्वेर भाई साहब यहाँ थे उसी समय, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी और उनको भी एक मेजर हेल्थ इश्यू हो गया, बाईपास सर्जरी हुई 1989 में। संकल्प आया कि जिस, उससे पहले ही संकल्प आया कि जिस डॉक्टर ने दादी का ऑपरेशन किया था उसको माउंट आबू बुलाया जाए, उस सर्जन को, और उस सर्जन को माउंट आबू बुलाया गया। और वो जो सर्जन आए उन्होंने ये सब देखा और बहुत प्रभावित हुए और ये एक कंसर्न व्यक्त किया कि यदि यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो इनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है। और उस समय सरकारी अस्पताल बहुत छोटा था, तो क्यों ना यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए। डॉक्टर अशोक मित्र, आगे कहानी बहुत बड़ी है जो कल देखेंगे। ब्रह्मा बाबा ऑपरेशन के लिए गए, शायद प्रोस्टेट का, अहमदाबाद मुंबई 1958 पूरे हॉस्पिटल में, HN हॉस्पिटल हरकिशन दास मुंबई, कितनी सारी सेवाएं हो गई। दीदी हॉस्पिटल में थी एक मास, सब लोग क्या कहते थे, ये जो पेशेंट है ना बहुत अच्छी है, ये पेशेंट जो है ना बहुत अच्छी है। हम खुद दादी जानकी के साथ कितनी बार अलग अलग जगह पर थे, तो दादी जानकी ऊपर एडमिट, तो सिक्योरिटी से लेके तो स्टाफ से लेके तो सब तरफ एक ही चर्चा रहती थी, वो ऊपर एडमिट है, उनको एक बार देख देखिए, योगी एडमिट है एक तो लोगों के मन में इच्छा रहती थी, ये कौन है, कौन है, कौन है, ये कौन है, ये सारे इतने सारे लोग सफेद ड्रेस पहन पहन के सुबह में मिलने आते, दोपहर में मिलने आते, क्या है ये, कौन है ये लोग। तो पांचवा कारण, जब महारथी बीमार पड़ते हैं तो क्या हो जाती है, कई सारी आत्माओं की सेवा हो जाती है। और दूसरा, वो जो सेवा कर रहे उनकी भी परीक्षा है ये। रामकृष्ण परमहंस बीमार है, गले का कैंसर हो गया है, और जो उनकी केयर टेकर है, उनका ब्राह्मणी शब्द तो नहीं है वहां पर, जो उनको देखभाल करता है, एक बार उसने थोड़ी लापरवाही की करते करते और उनका जो बलगम था पूरा, थ्रोट कैंसर, सारा कॉपियस अमाउंट स्पूटम निकलता है, कफ निकलता है, वो एक कटोरी में रखा हुआ है और उनका केयर टेकर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है उनकी तरफ। नरेंद्रनाथ आते हैं और वो पूरा जो कटोरी है कफ की वो पी जाते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम उस साथी को सिखाने के लिए। तो वो जो शिष्य होते हैं उनकी भी परीक्षा होती है, कोई बहुत ध्यान रखता है, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ये उनकी भी परीक्षा है। ये हो गए पांच कारण। छठवां कारण, महारथी बीमार क्यों पड़ते हैं या फिर महान आत्माओं में बीमारियां क्यों आती है। सिक्स्थ रीजन, जेनेटिक्स। कुछ बीमारी है जो आनुवंशिक होती है, परिवार में चलती है, जेनेटिक बीमारी, हेरिडिटरी बीमारियां, दादा परदादा को होती है तो बचपन से। जैसे एक बीके बहन है, हॉस्पिटल में एडमिट थी, कन्या है, 18-19 वर्ष उसकी होगी, अब तक सब ठीक चल रहा था, सेवा कर रही थी, अचानक लड़खड़ाने लगी और शरीर में, हाथों में शक्ति कम हो गई। इन्वेस्टिगेट हुआ, फ्रेडरिच अटैक्सिया, एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है, फिर दीवार को पकड़ पकड़ के चलती थी और फिर धीरे धीरे तो व्हीलचेयर पर आ गई, अभी घर पर है, घर पर ही बैठकर ही सेवा करती है, चल नहीं पाती है, उसका कोई इलाज नहीं। अभी उसका भाई जो था, छोटा भाई, वो भी ठीक था 12 साल तक, अभी 13 साल का हो गया, अब उसको भी चालू हो गई वो बीमारी। इन्होंने क्या पाप किए, कोई पाप नहीं किए, कभी किसी को दुख नहीं दिया, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये बीमारी जीवन भर चलेगी, जेनेटिक बीमारी है, परिवार में चलने वाली बीमारी है। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं बहुत छोटी उम्र में पता चल जाते हैं। तो ये बीमारियां का एक कारण क्या है, जेनेटिक्स, जीन्स में प्रॉब्लम, हेरिडिटरी डिस्पोजिशन की बीमारियां आ जाती है। नेक्स्ट कारण बीमारियों का, तमोप्रधान शरीर, कलयुग का शरीर है ये, तमोप्रधान शरीर है, इसमें पावर कहाँ रही है, सतयुग का शरीर नहीं है ये कि जिसमें पावर हो, ये शरीर ही तमोप्रधान है। नेक्स्ट, तमोप्रधान पांच तत्व, आठवां कारण बीमारियों का, ये जो पांच तत्व है, बाबा कहते नहीं, जमीन, अभी उसमें जो अनाज उगता है कैसा है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तमोप्रधान है, इसलिए शक्ति भी नहीं देता है। ये तत्व ही तमो प्रधान है। आठवां कारण, नौवां कारण, पोल्यूटेड एयर। पोल्यूटेड एयर, हवा कैसी है? प्रदूषित। क्या है इस हवा में? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतने सारे व्हीकल्स घूम रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? सब धुआं, केरोसिन, टॉक्सिन्स, केमिकल्स है पूरा शहरों में, सिटियों में। हमें पता नहीं, दिखता थोड़ी है, सूक्ष्म होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी को देखा गया ऊपर से, हेलीकॉप्टर से, तो क्या दिखा? पूरा काला 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 बादल, सूट। ये सूट जो होता है ना, कई चीजों से बना हुआ होता है, टॉक्सिक केमिकल्स, और ये सब हमारे अंदर जा रहा है तो शरीर बीमार पड़ेगा ही। नेक्स्ट, पोल्यूटेड वाटर। जो पानी हम पी रहे, क्या कुछ उसमें मिलावट है? चाहे कितना भी फिल्टर करो, सारी इम्प्यूरिटी आप नहीं निकाल सकते। तो पानी ही पोल्यूटेड है। नेक्स्ट, कंटेमिनेटेड फूड। भोजन जो आ रहा है वो भी कंटेमिनेटेड है। किससे कंटेमिनेटेड है? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्या कुछ उसमें डाल है? प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, कितनी सारी चीज़ें उसमें होती है, हमको वो दिखती नहीं। पॉलिश्ड राइस, रिफाइंड ऑयल, बेस्ट ऑयल जो है यूज अगर करना है वो कच्ची घानी वाला तेल होता है ना, कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का तेल, वो सबसे बेस्ट है। और अगर ऑयल को यूज करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है उसको कुक नहीं करना है, रॉ ऊपर से डालो जो कुछ बनाना है उसमें। चार प्रकार के तेल आते हैं वो, एक तो नारियल का, सरसों का, तीसरा तिल का, और चौथा ग्राउंडनट। चेंज करते जाना, एक मास एक, अगले मास दूसरा, अगले मास तीसरा, कीप ऑन चेंजिंग ऑयल। और जो ऑयल एक बार यूज कर लिया है उसको दोबारा यूज किया जाता है, जैसे ही दोबारा यूज होता है उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं, और ये ट्रांस फैट लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, जो आर्टरीज को ब्लॉक करता है। ब्राह्मण आत्माएं कहीं बाहर का खाते नहीं है फिर भी हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि नलिया क्यों ब्लॉक निकलती है? क्योंकि ऑयल कंटेमिनेटेड है, उसको इतना प्रोसेस किया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो ऑयल की इस शरीर को जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं जॉइंट्स उसके लिए चाहिए लुब्रिकेशन, सब मिथ्या, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर फूड कंटेमिनेटेड है, वो कहाँ से कंटेमिनेटेड हुआ है? ये पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ। इसके लिए अभी कौन सा चल रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें भी योगिक खेती, योग के वाइब्रेशंस देना उस खेती को, ये एक कारण है। अगला कारण चौथा, बारहवा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। शरीर को क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। खाना पीना और सोना अगर केवल रहा तो बीमारियां होगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। बीमारियां व्यक्ति को नहीं देखती, ये संत है या पापी है या कौन है, कोई भी हो, बिना एक्सरसाइज शरीर बीमार पड़ेगा जरूर। इसके लिए कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, कम से कम 40 मिनट्स 45 मिनट्स तो निकालने हैं अपने लिए। किसके लिए? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तीन प्रकार, एक तो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये कार्डियो रोज हो, ये कम से कम 10,000 स्टेप्स तो होने चाहिए मिनिमम हर दिन, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। सेकेंड, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगासन जिसमें बॉडी क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। तीसरा है जिम, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये सब हो हर दिन। दूसरा है प्राणायाम, ब्रेथ एक्सरसाइजेस, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो कोई भी हो बीमार पड़ना ही है। नेक्स्ट कारण, एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल और एनिमल से निकले हुए जो कुछ है वो हमारा भोजन नहीं है, उससे कहीं ना कहीं बीमारियां आएगी ज़रूर। डॉक्टर हेगड़े है, पद्मश्री या पद्म विभूषण उनको मिला है, उन्होंने कहा है कि हमारे शरीर में ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो मिल्क को पचा सके। पराई माँ का दूध हमारा भोजन है ही नहीं, हमको माँ का दूध तभी तक चाहिए जब अपनी माँ का दूध, जब हम छोटे हैं बस, उसके बाद में जो भी मिल्क वाला इसमें डाला जाएगा वो बीमारी के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान समय जिस तरह का दूध है वो तमोप्रधान है, और जिस तरह से आपके ग्लास तक पहुंचता है उसकी प्रोसेस अगर देखो तो उसमें हिंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, 50 साल पहले 100 साल पहले स्थिति और थी, पर अब भी अगर देखो वो सारे वीडियोज है, हजारों वीगनिज्म सोसाइटीज है संसार में, कई लोग होते हैं उनको तो टॉलरेट ही नहीं होता है, कोई भी बच्चा नहीं होता है जिसको दूध पसंद है, बचपन में दूध को बोला तो भागता है उधर, उसको तो बूस्ट डाल डाल के, कॉम्प्लान डाल डाल के नाक बंद करके पिलाया जाता है, नहीं तो दूध के लिए हमारी नेचुरल टेंडेंसी ही नहीं है पीने की, क्योंकि वो हमारा भोजन ही नहीं है, हमारी अपनी माँ का ही जो दूध था वो हमारा भोजन था बस, उसकी रिक्वायरमेंट एक समय के बाद पूरी हो गई, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। जो उसमें डालोगे तो या तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, लूज मोशंस होगा, कुछ तो होगा, बीमारियां होगी, एलर्जेंस तैयार होंगे, तो वो एक कारण। अगला कारण 14वां, कुकिंग प्रोसेस फ्राइड जंक अननेचुरल। बीमारियों का एक कारण क्या है? कुकिंग, जो भी भोजन को कुक करो उसके सत्व तत्व सब नष्ट हो जाते हैं, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और हमारे पास क्या बच जाता है? जो काला काला है बस, कोल, और वही पसंद आता है, उसमें टेस्ट होती है। इसलिए जितना हो सके नेचुरल पर जाओ, नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल। सीजनल अर्थात जिस आम का सीजन है तो आम, ऐसा नहीं आम का सीजन है मुझे एवोकाडो चाहिए, वो नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं कुछ। रीजनल, जिस जगह तुम रहते हो, नहीं तो यहां रहते हो और मुझे वो चाहिए जो वहां मिलता है। आप जहां रहते हो आपके उस रीजन में जो सीजनल फूड फ्रूट है वो आपका भोजन है, नेचुरल, उसको ज्यादा प्रोसेस नहीं करना, फ्राइड और ये सब, और ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉर्म में जितना है उतना लेना है उसको। तो ये एक कारण है। अगला कारण है ट्रॉमा या एक्सीडेंट्स। महारथी आत्माएं होती है, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, वो भी एक कारण है, वो भी एक हिसाब किताब है। जैसे एक बहन है, यंग बहन, अभी भी है, इधर ही है, तो सेवा केंद्र जा रहे थे, गीता पाठशाला, एक्सीडेंट हो गया, नेक इंजुरीज हो गई, दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालिसिस, बहुत यंग है, और ये रहेगा जीवन भर, अभी व्हीलचेयर में है। ब्रह्मा कुमारी बहन, ना हाथ हिलता है ना पैर हिलता है, उसकी बहन जी है वो उसकी देखभाल करते हैं, परंतु हमने एक बात देखा, ये जो बहन है कभी उदास नहीं, कभी दुखी नहीं, इतनी खुश हमेशा, कोई संकल्प नहीं, मुरली की पॉइंट्स पढ़ती रहती, क्लासेस सुनती है, इतना उमंग उत्साह में, एट द एज ऑफ 25-26 ये एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ पैरालिसिस, दोनों पैर पैरालिसिस, ना हाथ हिलते हैं ना पैर, पेशाब की नली लगी हुई है, परंतु कभी दुखी नहीं, कभी उदास नहीं, कभी कुछ नहीं, देखा होगा आपने। हाँ, अभी तो इधर ही आ गए रहने के लिए, तो हिसाब किताब, एक्सीडेंट हो जाना अचानक से, ये भी एक कारण। अगला, लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। बीमारियों का एक कारण क्या है? ये भी है। जब कोविड चालू हुआ था तो एक बहुत वरिष्ठ आत्मा ने हमसे पूछा था, क्या ब्राह्मणों को भी कोविड हो सकता है क्या? ब्राह्मणों को, मतलब एकदम बाबा के जो बच्चे हैं। तब हमने भी कहा था, हो तो सकता है, बहुत शुरुआत में जब जस्ट फर्स्ट या दूसरी तीसरी केस आई थी भारत में, ये किसको पता था कि कोविड से ये परिवार भी खाली हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स अगर नहीं लिए तो आप भी बीमार पड़ोगे। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं कभी इसमें, नेवर। 17वां कारण बीमारी का, ड्रामा। ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, कल्प पहले हुए थे अब फिर हो गया, क्या बड़ी बात है, नथिंग न्यू। इसमें भी यूज करना है नथिंग न्यू को, अभी संडे में तो कहा ठीक है बीमार हो गए, फ्रैक्चर ही हुआ ना, मरे तो नहीं, हार्ट अटैक ही आया ना, मरे तो नहीं, टाइम मिल गया अभी, तब वो सेवा की, अभी रेस्ट करके बाबा की सेवा करेंगे, याद करेंगे, थोड़ा किताबें पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, यज्ञ इतिहास का अध्ययन करेंगे, दादियों की क्लासेस सुनेंगे, वो सब करेंगे। लास्ट कारण, अननोन, अज्ञात। मेडिकल में जब बीमारी का कोई कारण नहीं होता है, हम उसको कहते हैं इडियोपैथिक, इडियोपैथिक रीजंस। इडियोपैथिक मीन्स पता नहीं क्या है, डॉक्टर्स को भी पता नहीं। ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिसको कहा जाता है इडियोपैथिक। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अभी उस दिन ओपीडी में एक बहन आई थी जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेंटर की बहन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिटेक्ट हो गया। वो पूछने क्या कारण है, हमने कहा इडियोपैथिक। कारण ही नहीं, पता ही नहीं कारण होगा तो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां है, इडियोपैथिक कारण है। तो ये भी बीमारियां क्यों आती है, ये तो हमने सोचा या जो कहा जाता है ये कारण हो सकते हैं, परंतु क्यों होती है एग्जैक्टली नोबडी नोज। तो कितने कारण बताए, 18। रीजन नंबर 1, कार्मिक अकाउंट्स, उनका किससे चुप्त होगा, अपने शरीर से। रीजन नंबर 2, हम भी साधारण लोग हैं, जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे हमारा शरीर है। तीसरा, प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाते, अच्छा लडोल भूरी दादी थी एडमिट, एकदम उपराम शरीर से, इधर इधर कर रहे उधर कर रहे। दादी को पूछते, दादी कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है कभी। बार बार पूछते थे कुछ तो बताओ ताकि कुछ दवाई लिखे, कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या दवाई लिखूं, ऐसे थे। नेक्स्ट, दूसरों आत्माओं का भाग्य बन रहा है। पांचवा, सेवा, ज्ञान की सेवा। अगला, जेनेटिक कारण। अगला, तमोप्रधान शरीर, फिर तमोप्रधान पांच तत्व, उसके बाद पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड, उसके बाद एक्सरसाइज की कमी। इसके लिए रोज एक्सरसाइज करना है। फिर बोलना मत कि बीमारी पता नहीं क्यों आ गई, मैं तो सब कुछ करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये भी खाती हूँ, वो भी खाती हूँ। खाते बहुत अच्छे हो, नेचुरल खाते हो, रॉ खाते हो, ये भी करते हो, वो भी, पर एक्सरसाइज करते हो क्या? नहीं करते, टाइम ही नहीं है। सुबह से चालू होते 3 बजे से रात को 11 बजे तक सेवा 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 सेवा। एक्सरसाइज के लिए टाइम किसके पास है? टाइम निकालना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। नेक्स्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स, तो जितना हो सके सारे एनिमल प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे कम करते जाना है, धीरे धीरे जीरो तक आ जाना। नेक्स्ट, कुकिंग, जितना हो सके लेस कुकिंग, जितना हो सके कुकिंग की जगह स्टीम करो, स्टीम करो वेजिटेबल्स को, ये भी कितना अच्छा है। ऑयललेस सब्जी बनाओ, कितना अच्छा है। स्टीम करो, ऊपर से सब डाल दो, तेल वगैरह डाल दो, मसाला डाल दो, बहुत अच्छी मेथड है ये स्टीम। कुक्ड करके उसका सब कुछ नष्ट करने से कम थोड़ा कम नष्ट होगा और टेस्टी भी रहेगा। एक होता है बॉइल्ड, पर बॉइल्ड से भी हमको लगता है स्टीमिंग ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, ड्रामा, ट्रॉमा, अच्छा ट्रॉमा और ड्रामा, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, ये सब होगा, या फिर ये एनिमल बाइट, सांप का काट लेना। जैसे कल पे एक पेशेंट एडमिट हुए थे, अभी बैठे थे, वहां से एक सांड आ गया, तो सांड को देखा उन्होंने और पानी लिया और उसके चेहरे पर मार दिया। अब उसने कुछ किया नहीं था, वो शांति से बैठा था, पर ऐसे ही खुराफत सूची, तो वो आया और सीधा यहां घुसेड़ दिया। एडमिट थे 2 दिन, अभी कल ही डिस्चार्ज हुए दादा। इसके लिए ज्यादा छेड़छाड़ मत करना, कुत्ते बिल्ली भालू बेचारे वो कुछ के नहीं करते, तुम क्यों करते हो उसको कुछ। बंदर, एक भाई को इधर ही ओम शांति भवन का वो जो गेट है पांडव भवन का, वो फोन पे बात कर रहे थे, एकदम बंदर कूद गया अच्छा इधर और गिर गया नीचे, पर फोन पे बात करना चालू था। अच्छा लड़ोल स्थिति। तो इनसे भी हिसाब किताब है हमारे। नेक्स्ट, ड्रामा, ला प्रिवेंटिव मेजर्स, मास्क, ये सारी चीजें साइंटिफिक चीजें जरूरी है, तो इसका उपयोग करना है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये सारे, और फिर ड्रामा, और लास्ट अननोन, अज्ञात, पता ही नहीं। तो महारथियों को भी बीमारी आएगी और हम सब भी महारथी है, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है और हमसे सेवा होती रहे। तो आज हमने ये एक पार्ट देखा, कल हम देखेंगे इस बीमारी की वजह से, दादी की बीमारी की वजह से कितनी बड़ी सेवा यहाँ पर हो गई। एक रेडिएशंस भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एयर में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस, हवाओं में रेडिएशंस है बहुत सारे। तो शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा, और कितना अचल देखा, कितना अडोल देखा, कितनी कैसी स्थिति देखी। भगवान को 8-8, 10-10 घंटे अपने में समाये रखना ये कोई कम बात नहीं है, कम बात नहीं है। ओम शांति।
शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का हो, इस दुनिया में हमने है साकार देखा। भोली सुरतिया नैन नूरानी, मस्तक में एक चमक रूहानी, भोली सुरतिया हो उनकी अनोखी चमक से हमने देखा है संसार अनोखा। उनकी अनोखी दुनिया में।